समाज के जो कक्ष में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत से कथा कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण श्लोक संख्या 7 से अध्याय पर्यंत मैं केवल श्लोक पढ़ूंगा या गाऊंगा और कुछ तात्पर्य से कुछ अंश पढ़ूंगा और विशेष रूप से कथा पर ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, ये जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रजवासी इंद्रियाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्रियाग, इंद्र का विशेष रूप से पूजन। जो गोवर्धन पूजन जिस दिन होती है उस दिन ब्रजवासी गोवर्धन पूजन ही करते थे। कई सौ सालों से जो प्रथा चल रही थी वो इंद्रियाग थी। इंद्रियाग गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण जो शुरू की है तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। सब तैयारी वैसी जैसे गोवर्धन पूजा जो होती है उसी प्रकार की सब तैयारी। केवल अंतर यही है कि इंद्र की पूजा की जगह कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई उसी सामग्री से, जो सामग्री जिस सामग्री से इंद्र की पूजा होती है। तो भगवान कृष्ण ने ये देख करके कि इंद्र के अंदर घमंड आ रहा है। अब इंद्र के अंदर घमंड आ रहा है, इंद्र कहाँ है और भगवान यहाँ पर है। भगवान तो सबको जानते हैं, छोटे से हैं कृष्ण 7 वर्ष के, लेकिन वे जो है इंद्र का घमंड देखे कि इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है ना, और एक बार भगवान की दृष्टि में इंद्र के द्वारा ये चोरी हो रही है। तो ब्रजवासियों का कुछ भी इसमें दोष नहीं है और वे पूजा कर रहे हैं तो इंद्र से कुछ भौतिक कामना भी नहीं करते हैं, जो तो कर्तव्य भावना से कर रहे हैं। जैसे गीता में भगवान ने बताया है कि कैसा है, अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो यजते। सात्विक यज्ञ क्या होता है? बिना किसी फल की आकांक्षा के किसी भी देव यज्ञ पूजा करते हैं या यज्ञ कर रहे हैं। अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो यजते कष्टव्य में वे कि मना समाधाय सात्विका, कि यज्ञ करना चाहिए इसलिए यज्ञ किया है, कोई भौतिक कामना नहीं है। तो सात्विक पूजा है तो उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई दोष नहीं, शुद्धिकरण होता। तो ब्रजवासियों की ओर से कुछ भी इसमें कमी नहीं थी और भगवान को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन शिकायत किससे थी? किससे शिकायत थी? इंद्र से शिकायत थी। इंद्र अपनी पूजा समझ रहे, क्योंकि ये इन जो देवता लोग होते हैं वे भगवान की ओर से नियुक्त किए हुए अधिकारी होते हैं जो पूजा प्राप्त करते हैं और पूजा को भगवान तक पहुँचाएँ। जैसे कि टैक्स कलेक्टर होते हैं तो वो जो है टैक्स वसूल करते हैं और कहाँ जमा करते हैं? सरकार को जमा करते हैं। तो कृष्ण सरकार हैं तो सरकार की नज़रों में इंद्र कौन है? चोर है, क्योंकि वो पूजा ले रहा है और भगवान को पूजा नहीं दे रहा है। तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को ये सब नहीं बताया कि मैं परमेश्वर हूँ और इंद्र जो है मेरी चोरी कर रहा है। नहीं, कृष्ण जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो कृष्ण दूसरे ही कुछ युक्तियाँ दे करके इंद्र की पूजा बंद कराई। अरे इंद्र से हमें क्या लेना देना, कहाँ इंद्र और कहाँ हम, हमारा इंद्र से सीधे कोई संपर्क तो होता नहीं, ना वो हमसे मिलते ना हम उनसे मिलते। सीधा संपर्क तो हमारा गोवर्धन पर्वत से है। गोवर्धन पर्वत जो गौओं को वर्धित करे यानी बढ़ाए, गौएँ जो है घास खाती हैं और जो है उसमें हमें अच्छी छाया मिलती है ना, गोवर्धन से हमारी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। तो हम अशिक्षित जो है जंगली लोग हैं तो हम जो है पर्वत की पूजा क्यों ना करें? पर्वत की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, गौओं की पूजा करो, ये हमारे जो है प्रत्यक्ष है देवता। तो कृष्ण जो है बड़े सरल युक्तियों से इंद्र की पूजा बंद करा दी, गोवर्धन की पूजा। और फिर गोवर्धन की पूजा जब कृष्ण कराई तो इंद्र को भी कोई शिकायत नहीं थी या इंद्र को पता भी नहीं चला। तो फिर जब इंद्र को पता चला तो यहाँ तो नहीं बताया गया कि इंद्र को किसने बताया, किस कैसे पता चला, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है कि नारद जी कथा सुना रहे हैं, ये सब कथा नारद जी सुना रहे हैं, जब भोला सुखो तो कहते मैंने बताया था इंद्र को, नारद जी कहते मैंने बताया था इंद्र को, और इस तरह से बताया जैसे उसको क्रोध आए। नारद जी के बताने का तरीका भी तो कभी इस तरह का होता है, कभी उस तरह का होता है। इस तरह का बताया नारद जी ने कि इंद्र को लगा कि मेरा अधिकार छीना है कृष्ण ने, और कृष्ण जो है सामान्य मनुष्य, मनुष्य का एक बालक है कृष्ण। तो नारद जी इस तरह से समझाया इंद्र को, इंद्र को बहुत गुस्सा आया, और इंद्र ने जो है फिर सामर्थ्य नहीं हो सका। तो इस सातवें श्लोक चल रहा है, सातवें श्लोक से मैं शुरू करूंगा। तो वो इंद्र की बात जो है सामर्थक मेघों से हो ही रही है, तो सामर्थक मेघों से ही कह रहे हैं। सामर्थक मेघ वो हैं जो कि प्रलय काल के समय वर्षा करते हैं, सामर्थक मेघों की वर्षा जो है ना कभी किसी ने देखी ना कभी किसी ने सुनी प्रलय काल के समय, लेकिन वो उस समय देखिए प्रलय काल की वर्षा, वो केवल ब्रश के ऊपर, वो पूरी पृथ्वी ऊपर प्रलय काल की जो वर्षा होती है तो सात और समुद्र एक हो जाते हैं, सात और समुद्र एक हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी डूब जाती है। तो मैं अपने हाथी अरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान और शक्तिशाली वायु देवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे रहूंगा। तो मैं भी पीछे आ रहा हूँ, मतलब सामर्थक मेघों को डर लग रहा है क्योंकि उनका ये समय तो नहीं है, और ऐसे गलत समय में अगर वर्षा करेंगे तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ा जो है कार्यवाही की जा सकती है उनके विरुद्ध, है ना। तो इंद्र कहते तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम चलो आगे वर्षा करो। अहम चैरावतम नागम आरोहणम विजय ब्रजम मरुद्गढ़ महावेगैर नंद गोष्ठर जिघांसया। मरुद्गढ़ महावेगैर 49 मरुद्गढ़, इनकी अलग कथा है कि ये दीति के पुत्र थे लेकिन दैत्य नहीं कहलाए बल्कि ये देवता बन गए, और ये 49 एक बालक था जिसको इंद्र ने अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए, तो फिर 7 बालक बन गए, और फिर रोने लगे। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि ये 7 बच्चे रो रहे हैं, अब तो और आवाज हो रही है, माता जाग जाएंगी। तो 7 के और 7 टुकड़े दिए, 49 बालक बन गए, और वो रोए, वो बोले क्या हमें क्यों मारते हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं। तब इंद्र को समझ आया कि हाँ कश्यप मुनि ने तो ये कहा था कि अगर दीदी से कुछ व्रत में त्रुटि हो जाएगी तो वो जो बच्चा है वो इंद्र का शत्रु और इंद्र को मारने वाला ना बनकर के इंद्र का भाई बन जाएगा, इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो इंद्र कहा रे तुम लोग जो है मुझसे डरो नहीं, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। इस तरह से जो है ये इंद्र के भाई बन गए 49। तो मरुद्गढ़ है ये, तो इंद्र कह रहे हैं मरुद्गढ़ महावेगैर नंद गोष्ठ है जिघान से, नंद के गोष्ठ को जो है नष्ट करने के लिए मैं भी जो है मरुद्गणों के साथ आ रहा हूँ। महावेग है जो बहुत वेगशाली है, तो बादलों को जो है बरसाने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, हवा की सहायता, और हवा के जो देवता हैं वायु के देवता कितने हैं 49 हैं, मरुद्गण 49 मरुद्गण हैं, 49 प्रकार के जो है वायु होते हैं। तो इंद्र कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग अकेले थोड़े हो, ये विनाशकारी कार्य जो तुम कर रहे हो इसके पीछे मेरा हाथ है, और मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और ऐरावत पर चल करके मैं भी आ रहा हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा इंद्र के आदेश से प्रलयकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर, समय से पूर्व बंधन से मुक्त, यानी बंधे रहते हैं ब्रह्मा जी के दिन के जो है अंत में खोले जाते हैं, इनका बंधन खोला जाता है। तो इंद्र ने बंधन खोल दिया, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। इंद्र का जो अधिकार है वो तो एक मनमंत्र का है, एक मनमंत्र का है ना, अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन मंत्र होते, तो 7वां मन मंत्र चल रहा है। 7वें मन मंत्र के बाद इंद्र भी बदल जाएंगे, तो इंद्र को तो अधिकारी नहीं था, सामर्थक मेघों के बंधन को खोलने का अधिकारी नहीं था, यह अधिकार का दुरुपयोग किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए। वहां वे ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासार पीड़िया मासु रोजसा। तात्पर्य में लिखा है, सामर्थ्य में समूची पृथ्वी पर एकमात्र विशाल सागर से छा सकते थे। ये मेघों ने महान शक्ति के साथ ब्रज की समतल भूमि को आपला कर देना प्रारंभ किया। भयानक वायु देवताओं द्वारा उत्प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित होते और ओलों की वर्षा करते हुए कड़कड़ाहट के साथ गरजने लगे। विद्युतमान विद्युत भी स्तनता स्तन यत्न भी तीव्र वृसुर जल सरकरा। बहुत भयानक दृश्य है। कैसी वर्षा है ये? बादलों ने जब बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची अनीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। स्थूला स्थूला वर्ष धारा मुंचन स्व मुंचत स्वभ्रे स्वभीक्षण सहा जलोघे प्लाव्यमाना भूर ना दृश्यते न तो नतम। वर्षधारा कैसी है? स्थूणा और स्थूला दो प्रकार की वर्षाधारा है। वर्षा की धारा दो प्रकार की है। कैसी है? एक है स्थूणा। स्थूणा का मतलब खंभे के समान वर्षा की धारा है, या कभी हाथी की सूंड के समान कही जाती है वर्षा की धारा। सोचिए कैसी धारा होगी, खंभे के समान अगर वर्षा की धारा हो तो कैसा लगेगा? अरे वो ऐसी वर्षा की धारा हो रही है फिर भी नींद आ रही है। इतने भारी संकट में जो है अभी ब्रजवासी पड़े हैं। कैसी धारा है ये खंभा देख रहे? ऐसी धारा हाँ, आपने जो देखी धारा वो कैसी धारा होती है? कितनी मोटी होती है? 1 सेंटीमीटर नहीं, आधा सेंटीमीटर भी नहीं होती, आधा सेंटीमीटर भी नहीं होती है, बूंदे होती है। तो अगर धारा जो है धारा है तो खंभे के समान मोटी धारा, और या फिर स्थूला वर्ष धारा, स्थूणा और स्थूला। तो वर्षा की धारा जो है एक स्थूणा है, स्थूणा का मतलब खंभे के समान है। दोस्ती स्थूला, स्थूला का मतलब बूंद भी इतनी मोटी मोटी है। गर्ग संहिता में लिखा है कि हाथी के बराबर बूंद है। कितनी बड़ी बूंद है? हाथी के बराबर। सोचिए, देखने की जरूरत नहीं है और देखना चाहेंगे भी नहीं आप। सोचिए कि कितना बड़ा संकट है। धारा एक अगर धारा है तो वो कैसी धारा है? कितनी मोटी है? खंभे के समान मोटी है। और दूसरे बूंदों की वर्षा है, दो प्रकार की वर्षा है, एक तो धारा की है दूसरी बूंदों की है। बूंदों की वर्षा है तो कैसी बूंद? हाथी के बराबर बूंद है, ऐसी ऐसी धारा है। जलोघे प्लाव्यमाना भूर, तो पूरी की पूरी जो जमीन है वो डूब गई। नादृश्य न तो नतम, ऊंचा और नीचा स्थान अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। जमीन में अगर आप चले ऐसे ऐसे पानी भरी है और जमीन में आप चले तो कितना नीचा है, कहां पर कितना ऊंचा है कुछ पता नहीं चलेगा। कितना संकट है। तो जी कहीं पर जो है 20 फुट नीचे भी हो सकता है जमीन हो, और आप चलेंगे तो क्या होगा? बहुत संकट है। 50 फुट नीचे भी हो सकती है जमीन, कहीं पर 50 फुट नीचे, कहीं 20 फुट नीचे, कहीं पर 1 फुट नीचे, कुछ पता नहीं। और 1 फुट नीचे से एकदम से 20 फुट नीचे हो जाए जमीन, आप चलेंगे बहुत संकट है। ना दृश्य न तो ना तम। फिर अत्यधिक वर्षा और हवा के कारण, और मरुद्गढ़ हवा पैदा कर रहे हैं, 49 प्रकार की हवा चल रही है। कोई हवा ऊपर की हो, कोई नीचे, कोई इधर उधर, कई तरह की हवा, अत्यधिक वर्षा और हवा के कारण कांपती हुई गौएं और अन्य पशु और शीत से पीड़ित ग्वाले और गोपियां सभी शरण के लिए गोविंद के पास पहुंचे। अत्याशा राति माते ने पशु जात बेपनाम गोपाल गोप्य सीतार्ता गोविंदम शरणम जय हो। शीत आर्ता सर्दी में जो है बहुत कष्ट पा रहे हैं, पशु जात बेपना जो पशु हैं वो कांप रहे हैं, और गोपा और गोपियां, गोप और गोपियां भी शीत में आर्त करके कहां क्या करते हैं, गोविंदम शरणम जय हो, गोविंद के शरण लेते हैं। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती और अपने सिरों और अपने बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुई गौएं भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची। सिरहसुतांचकायेन प्रच्छाद्यासार पीडितां वेपमाना भगवतः पादमूलम् उपायययोः। अपने सिरों को भी और अपने बछड़ों को भी, शतांत मतलब बच्चों को भी, ब्रजवासी भी जो है उसमें है, तो बच्चों को भी जो है अपने शरीर से ढकने का प्रयास कर रहे हैं, सिर को भी शरीर से ढकने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को भी। अब क्या प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं को बारिए, गोकुल को बारिए, गोकुल में गौएं भी हैं और गोल वाले भी हैं, गोकुल को बारिए। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें बचा लें। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपिता भक्त वत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण का दो बार नाम लेकर के ब्रजवासी क्या कहते हैं, महाभाग, कि तुम महान भाग्यशाली हो, है ना, मतलब भगवान ही समझते हैं। अगर कृष्ण को भगवान समझेंगे तो स्नेह नहीं कर सकते हैं, बालक जैसा स्नेह नहीं कर सकते हैं, तो भगवान बालक का स्नेह चाहते हैं, इसलिए भगवान जो है अपने का अपना जो है ऐश्वर्य नहीं दिखाते हैं, अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए हैं। तो जितने ब्रजवासी हैं वो क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग, महाभाग का मतलब तुम्हारे भाग्य से हमारी भी रक्षा हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे भाग्य से होती है, और तुम्हारे भाग्य से तुम्हारी रक्षा होगी तो हमारी भी रक्षा होगी, क्योंकि हम तुमसे जुड़े हुए हैं, है ना। कृष्ण कृष्ण महाभाग, है ना। तो नाथम गोकुलम प्रभु, तो पूरा गोकुल जो है आपको ही अपना नाथ मानता है। प्रातु मरहसी देवाना कुपिता, तो कुपित देवता से आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप भक्त वत्सल हैं। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, प्रभुपात में लिख रहे हैं, तात्पर्य में लिखा है, कृष्ण जन्म के समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, अनेन सर्व दुर्गाणी लोयम अंजस्तरिष्यत है, कि इस बालक की रक्षा करने से तुम भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बच जाओगे, इस बालक की तुम लोग रक्षा करो। तो गर्ग जी ने भी नहीं बताया था कि ये बालक भगवान है, परमेश्वर है, इस बालक की तुम लोग रक्षा करो, इस बालक के रक्षा करने से तुम लोगों की भी बड़े बड़े संकटों से रक्षा हो जाएगी, अंजस अंजस मतलब अनायास से रक्षा हो जाएगी, बिना किसी प्रयास से, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना, इस बालक की कृपा से। तो ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति में श्री नारायण इस बालक को शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा अतः उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। आगे ओलों और तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए गोकुलवासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि कुपित इंद्र का एक कार्य है। शिला वर्षा देवादेन हन्यमान चेतनम निरीक्ष भगवान मैंने कुपित इंद्र कृतम हरि। तो भगवान ने समझ लिया, वो तो होना ही था, भगवान को पता था कि होना ही है, क्योंकि इंद्र में जो है चूंकि अब ये भाव आ गया, बहुत रजोगुण आ गया है, पूजा सम्मान सत्कार मान पूजा इच्छा हो गई पाने की, और जब उसमें बाधा पड़ेगी तो उसको गुस्सा आएगा। तो यहाँ तात्पर्य है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इंद्र ने ब्रजवासियों पर जो कहर ढाया वो भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा नियोजित था। भूखे व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए आचार्य कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उस सुख में वृद्धि होती है जो उत्तम भोजन खाने पर मिलता है। इस तरह भूख से भोजन करने का आनंद बढ़ जाता है। इसी प्रकार ब्रजवासियों को यद्यपि भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा है किंतु इंद्र के कार्यों से आंतरिक पीड़ा हो रही है। क्या आंतरिक पीड़ा हो रही है? कि हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे। ब्रजवासियों को क्या चिंता है कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे और कृष्ण कहाँ रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ अज्ञात दिशा में हम जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे हमें कुछ पता ही नहीं, और फिर कृष्ण का संग ना मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो कुछ चिंता किस बात की है? मरने की चिंता नहीं है बल्कि कृष्ण से दूर होने की चिंता है। इसलिए वो क्या चाहते हैं? अपनी रक्षा चाहते हैं ताकि वे कृष्ण के साथ जाए, है ना। तो ये तो श्री कृष्ण ने अपने आप सोचा, कृष्ण ने अभी उनसे नहीं बोला, अभी क्योंकि हमने इंद्र का यज्ञ रोका, अतः इंद्र अति प्रचंड हवा फूलों के साथ घनघोर और बिना ऋतु की वर्षा कर रहा है। क्योंकि बिना ऋतु की वर्षा है, कार्तिक का महीना था ना वो, कार्तिक का महीना, तो वैसे तो वर्षा के चार महीने होते हैं, कार्तिक भी वर्षा का मतलब आ जाता है वर्षा के अंदर, लेकिन वास्तव में दो महीने वर्षा, वास्तव में तो वर्षा दो महीने की होती है ना, श्रावण और भाद्रपद, है ना, और आषाढ़ श्रावण नहीं, चार चतुर्मास में श्रावण से शुरू होता है ना, श्रावण भाद्रपद है ना, फिर आश्विन और कार्तिक है ना। तो आश्विन और कार्तिक जो है वर्षा के बाद कौन सी ऋतु होती है? शरद। हाँ, तो शरद ऋतु कहलाती है, शरद ऋतु होती है वर्षा के, शरद ऋतु। तो वर्षा मतलब बहुत कम होती है, और फिर इतनी वर्षा तो ये ऋतु के अनुसार में, बिना ऋतु के इतनी घोर वर्षा, ये तो कैसी वर्षा है? प्रलयकालीन वर्षा है। अपर्तुल्मणम वर्षम अतिवासम शिलामयम सयागे विहते स्माभिर इंद्रो नाशाय वर्षति। इंद्र विनाश करने के लिए वर्षा करता है, जबकि इंद्र वर्षा करते हैं किसके लिए? निर्माण के लिए, पैदावार के लिए, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। या फिर इंद्र विनाश के लिए वर्षा कर रहे हैं, है? इंद्रो नाशाय वर्षति। इंद्र ने क्या सोचा? अगर मैं वर्षा नहीं करूंगा तो ब्रजवासियों को नष्ट होने में बहुत साल लगेंगे, इनको नष्ट करना है। इंद्र चूंकि वर्षा का देवता है, वर्षा पर नियंत्रण करता है, तो अपने नियंत्रण के द्वारा उसने क्या किया? अगर वर्षा ना करे, उसका नियंत्रण है वर्षा करने और ना करने पर, तो वर्षा ना करे तो ब्रजवासियों को नष्ट होने में बहुत टाइम लग जाए, है ना, क्या बचाया है कि नहीं। तो इसलिए उसने प्रलय काल के मेघों का कहती कि तुरंत नष्ट कर दो, इनको तुरंत नष्ट कर दो, है ना। तो भगवान विचार कर रहे हैं, इंद्र क्या कर रहा है? मेरे शासन के अंदर ये अपना अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, कि कृष्ण तो परम शासक है। मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पाद का पूरी तरह सामना करूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने असर का घमंड करते हैं और मूर्खतावश झूठे अपने ब्रह्मांड को, अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझते हैं, मैं ऐसे अज्ञान को नष्ट करूंगा। तो कृष्ण अपने आप सोच रहे मन में, ब्रजवासियों को नहीं बता रहे। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण क्या है? एक छोटे से बालक, है ना। ये अपने अंदर सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इंद्र में जो है इतना, इंद्र की इतनी हिम्मत है, है? तो मैं दिखाता हूँ उसको। तो भगवान कह रहे हैं तत्र प्रतिविधि सम्यंग आत्मयोगे न साधये लोके से मानिना मोढ़िया हनिष्ये श्रीमदं तमहा। तो भगवान इंद्र को दंड नहीं दे रहे हैं। यहाँ भगवान ने जो विचार किया वो ये विचार नहीं कि इंद्र को दंड दिया जाए, अगर चाहते तो इंद्र को दंड दे सकते तत्र विधिम सम्यक आत्मयोगेन साधये, मैं साधन करूंगा अपनी योग शक्ति के द्वारा उसकी प्रतिविधि, प्रतिविधि का मतलब सुरक्षा की विधि का जो है उपाय मैं करूंगा अपनी योग शक्ति के द्वारा, और उसी से ही उसका जो है मूर्खता पूर्ण जो घमंड है उसका दूर हो जाएगा। तो भगवान जो है इंद्र को दंड नहीं दे रहे हैं, और भगवान क्या कहते हैं मन में सोच रहे हैं देवता सतोगुण से युक्त होते हैं, अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मैं ऐसे मिथ्या अभिमान को भंग करता हूं तो इससे इनका लाभ होता है, इनको शांति मिलती है, इनका जो है भला होता है। भगवान सोच रहे हैं कि मैं जो है इनका केवल घमंडी चूर करूंगा लेकिन मैं इसको दंड नहीं दूंगा। तो भगवान ने विचार किया इंद्र को दंड नहीं दूंगा, इतने से ही इसका अभिमान दूर हो जाएगा, क्योंकि उपाय है, इसका तो कोई उपाय नहीं था। और तुरंत उपाय क्या कर सकते हैं आप, कोई हो सकता है उपाय, क्यों आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है कोई उपाय है, ऐसी वर्षा हो तो है कोई उपाय नहीं। कृष्ण अगर उपाय कर दे इतने से ही उसका घमंड दूर हो जाएगा। नहीं सद्भाव युक्ता तो अगर मैं जो है इसका उपाय कर दूं अपनी योग शक्ति के द्वारा तो उपाय मात्र से ही इसका घमंड दूर हो जाएगा। इसका प्रयास विनाशकारी है लेकिन मैं कोई विनाशकारी कार्य नहीं करूंगा। कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं मैं कोई विनाशकारी कार्य नहीं करूंगा बल्कि सुरक्षाकारी उपाय करूंगा, इससे इसका घमंड दूर हो जाएगा। ये विनाश नहीं, विनाश का जो है कोई भी कार्य नहीं होगा, विनाश कार्य को मैं रोकूंगा। अतः मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोपों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि मैं ही इनका आश्रय हूँ, मैं ही इनका स्वामी हूँ और ये मेरे ही परिवार के हैं। मैं अपने भक्तों की मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत लिया है। तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नातम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगे स्वयं में व्रत आहिता। तस्मान मत शरणम गोष्ठम, ये जो गोष्ठ है गोकुल है ये मेरे शरण में है। मन्नाथम और मुझको ही नाथ मानता है, मत परिग्रहम और मेरी अपनी ही संपत्ति है, मेरी अपनी ही चीज है, तो अपने आत्मयोग के द्वारा मैं रक्षा करूंगा क्योंकि ये मेरा व्रत है, ये मेरा व्रत है। कृष्ण का व्रत ये है, क्या व्रत है कि जो मेरी शरण में हो पूर्ण रूप से समर्पित हो तो उसकी रक्षा मैं करता हूं। तात्पर्य लिखा है वृंदावन वासियों ने कृष्ण को अपना प्रिय बालक मित्र प्रेमी और प्राण मान रखा था और भगवान उनकी भावना को जानते थे। इस तरह कृष्ण इन भाग्यशाली लोगों के बीच रहते हुए इनके घरों में खेतों में विचरण करते थे, अपना ही घर मानते थे। सब ब्रजवासियों का घर है अपना घर मानते थे, इसलिए चोरी भी करते थे अपना घर मानकर चोरी करते, मेरा घर है ना तो मैं रक्षा भी तो करूँगा, रक्षा भी कर लेंगे। ये कहकर साक्षात विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया, जिस तरह कोई बालक कुकुर मुत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है। कृत्वा गोवर्धनाचलम उधार ले लिया विष्णु छत्राकम वह बालक। तो किस तरह से लीला पूर्वक जो है उठाया गोवर्धन पर्वत को, कृष्ण ने किस प्रकार से लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत उठाया, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। छत्राकम एवं बालका, छत्राकम में जो इसका शब्दार्थ है कुकुरमुत्ता कहा गया है। कुकुरमुत्ता क्या है, लकड़ी में होता है कुकुरमुत्ता, ये शब्द तो ऐसे बना कि कुत्ता अगर पेशाब कर दे लकड़ी में तो हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो तो बरसात में वैसे ही हो जाता है। कुत्ता के पेशाब करने से भी होता है या नहीं होता अलग बात है, लेकिन कुकुर मुत्ता सब जो है मना इसी तरह से कि लकड़ी में कुत्ता पेशाब करे तो ये हो जाता है, लेकिन कुत्ता के पेशाब करने की जरूरत नहीं है ऐसे भी हो जाता है लकड़ी में। तो कुकुर मुत्ता इसी को मशरूम बोलते हैं ना, हम लोगों के लिए मना है, खाना मना है ना। तो ये जो है कोई बालक जो है बरसाती छत्ता भी बोलते हैं लोग, तो बालक बरसाती छत्ता उखाड़ उसको उखाड़ने में कोई परिश्रम नहीं होता। लकड़ी में जो पैदा होता है इतना कच्चा होता है, बच्चा उखाड़ ले कोई परिश्रम नहीं होगा, उठा ले तो कोई परिश्रम नहीं होगा। ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, ऐसा उदाहरण देना भी तो जरूरी है, नहीं तो कोई क्या समझेगा। अगर उदाहरण ना दिया जाए तो पर्वत को उठाया तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे उठाया होगा कृष्ण, है ना, आएगा ना दिमाग में। इसलिए उदाहरण देना जरूरी है। एक बालक जैसे कुकुर मुत्ता को उठाए, ऐसे उठाया, क्या परिश्रम होता है। अच्छा, यहाँ दिल्ली के लोग, दिल्ली में लोग नहीं समझते। अच्छा हाँ, दिल्ली शहर में लोग नहीं समझते हैं। कितने लोग नहीं समझते हैं या कितने लोग समझते हैं बताइए, हाँ बताइए, कितने लोग समझते हैं। आधे लोग, 50% लोग समझते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल लकड़ी भी जो है इतनी सुरक्षित रखी जाती है कि बरसात में वो लकड़ी दिखाई भी नहीं पड़ती है, जो बरसात में पड़े हो सड़ रहे हो। और फिर लकड़ी में जो है सब पेंट लगा करके इतना चमका देते हैं कि कुछ होता ही नहीं लकड़ी। तो दिल्ली शहर में लोग नहीं समझ पाते, गांव में लोग भी पेड़ हैं, टूटे पेड़ हैं वहाँ पड़े हुए हैं, बरसात जो है गीले होते हैं, उससे फिर कुकुर मुत्ता होते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन वो ऐसे डंडी होती है और उसमें बड़ा सुंदर छाता जैसा लगा रहता है, छत जैसा होता है, बड़ा अच्छा आकार होता है उसका कुकुर मुत्ता का। तो बालक जो है उठाए, ऐसा जो है बिना किसी प्रयास के कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तत्पश्चात भगवान ने गोपों को संबोधित किया कि हे माँ, हे पिता, हे ब्रजवासियों, अपने गौर समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। अथाय भगवान गोपान हे मिता तजो कसो कजो समिछत गिरिगर तम सगोधना। तो इस पर्वत की गर्त में आ जाओ, तुम आप सब लोग जो है इस पर्वत के गर्त में आ जाओ, है ना। यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान किया है। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि बताया तो नहीं गया है कुछ, लेकिन इसके अंदर और भी श्लोक में रहस्य है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इतनी गौएं, हजारों गौएं, बछड़े, सांड गोवर्धन जैसे पर्वत नीचे नहीं आ सकते थे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्ष के कारण अचंत शक्ति प्राप्त कर ली और इस पर्वत के नीचे सब लोग आ गए। ये कृष्ण की अचंत शक्ति है, गोवर्धन पर्वत के नीचे इतने लोग नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ये अचंत शक्ति कृष्ण की अचंत शक्ति है। जैसे कृष्ण के छोटे से मुख में माता ने पूरा ब्रह्मांड देखा था, और कृष्ण जो है माता यशोदा की गोद में पड़े हैं, छोटे से हैं कृष्ण, अचंत शक्ति है। और गोवर्धन का गड्ढा, उसमें भी जो है कितना प्रकाश पैदा कर दिया, उसमें रत्नों का प्रकाश हुआ, उसके अंदर और भी नीचे बेसमेंट, बढ़िया बढ़िया बेसमेंट है, सब जो है बड़ी सुविधा पूर्वक सब लोग जो है उसके अंदर आ गए, है ना। और भगवान कहते हैं तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि ये पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा, है ना। अब देखो कितने छोटे से कृष्ण है यहाँ पर जो है वो नहीं है, जैसे हनुमान जी पर्वत उठाते हैं तो वो पर्वत से बड़ा रूप धारण करते हैं, तो उनके हाथ में पर्वत दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया। कृष्ण 7 वर्ष के छोटे से बालक, और छोटे से बालक का बिल्कुल छोटा सा हाथ और एकदम कोमल हाथ, कोमल उंगली उसमें जो है धारण किए हैं, है ना। तो लगेगा कि कैसे कि बाद में गिर सकता है पर्वत। तो भगवान क्या कहते हैं, आपको डरना ही चाहिए ये पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा, नहीं आप लोग हवा और वर्षा से भयभीत होइए, क्योंकि इन कष्टों से आपके छुटकारे की व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। त्रास है मह कार्यो मन हस्तांतरी निपात नाद वर्ष भय नालम तत्राणम विहितम ही वहा। तो भगवान का ये कहना है कि मैं अपनी शक्ति से गोवर्धन नहीं धारण कर रहा हूँ, जिस गोवर्धन की पूजा आपने की है वे गोवर्धन ही स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि तत्त्राणाम निहितम ही वा, आप लोगों की सुरक्षा पहले से निश्चित हो चुकी है, तो जिससे आपने पूजा की है तो वो आपकी रक्षा भी कर रहा है। आपने किसकी पूजा की? गोवर्धन की पूजा की, और गोवर्धन के रूप में भगवान स्वयं जो है भोग भी तो लगाए थे, खाया भी तो था, पूरा अन्नकूट खाया था, है ना। तो जब खाया तो फिर बजाया भी, इंद्र तो नहीं दर्शन देते कभी, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। अब इन्होंने इतना खाया है तो कुछ करेंगे भी ना, कुछ काम भी तो करेंगे। तो भगवान का एक मतलब कहना है यहाँ, मतलब संकेत यह है कि ये गोवर्धन जो है देवता मेरे हाथ में आ गए हैं आप लोगों की रक्षा के लिए, इसलिए आप निश्चिंता मत करिए कि मेरे हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि गोवर्धन स्वयं मेरे हाथ में आ गए हैं। तो अपनी शक्ति से ही वो जो है आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान का जो है यहाँ भाव ये है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए गए वे सभी पर्वत के नीचे प्रविष्ट हुए, जहाँ उन्हें अपने लिए अपनी गऊओं बछड़ों सेवकों पुरोहितों के लिए और साथ ही साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया, बढ़िया बढ़िया स्थान मिल गया, अच्छा अच्छा स्थान बना था। गोवर्धन पर्वत की गर्द में भी जो है बढ़िया बढ़िया स्थान मिल गए, आसन वगैरह जैसे पत्थर के ही आसन बने हैं, बढ़िया बढ़िया बने हैं पुरोहितों के लिए, और अच्छा ऊंचा स्थान चाहिए, प्रकाश का भी चाहिए, प्रकाश की भी व्यवस्था। नहीं तो प्रकाश कैसे होगा, गर्द में कैसे प्रकाश होगा, है ना। तो पूरा तथा निर्विश्वर गर्तम कृष्णाश्वासित मानस यथावकाशम सदना सम्रजा सोप जीना। भूख और प्यास भूलकर अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को भूलकर श्री कृष्ण पर्वत को धारण किए 7 दिनों तक वहीं खड़े रहे, सारे ब्रजवासी उन्हें देखते रहे। ये 7 दिन और 7 रात कैसा उत्सव है, नयन उत्सव, नयन उत्सव, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और कृष्ण हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं, ब्रजवासी हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं। ये उत्सव 7 दिन 7 रात हुआ, ना खाना ना पीना ना सोना, कितना आनंद है कृष्ण का दर्शन। क्षुत्रिन्वथां सुखापेक्षां हित्वा ते ब्रजवासिनी वीक्षमाणो दधारात्रिं सप्ताहं न चलत् तदा। तात्पर्य लिखा है श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का निरंतर अमृत पीते हुए ब्रजवासियों को ना तो भूख लगी, ना प्यास, ना थकान, और कृष्ण भी उनके रूप को देखकर खाना पीना सोना भूल गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि सामर्थक मेघों से 7 दिनों तक लगातार वर्षा होने पर भी मथुरा जनपद में बाढ़ नहीं आई। ये भी आज कृष्ण बता है कि अगर मान लो गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं आ रही वर्षा तो आसपास आएगी तो कितना पानी होगा और कितना नुकसान होगा, कितनी क्षति होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना। गरग संहिता में लिखा हुआ है, गरग संहिता में लिखा हुआ है कि वर्षा का पानी तो उधर भी आता नहीं, समझे, जहां गर्त है उसमें भी तो आएगा पानी, है तो फिर क्या करेंगे। उस समय एक ऐसी दीवार की आवश्यकता थी जो बहुत मोटी हो, जैसे बांध का जो है दीवार हो, बहुत मोटी बहुत मजबूत हो बहुत ऊंची हो, ऐसी दीवार की आवश्यकता थी, है ना। और कृष्ण तुरंत इसकी व्यवस्था कर दी, क्या शेष जी को आदेश दिया आप रोको पानी को, अभी चारों तरफ जो है अपनी दीवार बना करके बैठ गए, इतनी मोटी दीवार वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ। शेष जी ने जो है ऊंची नीची जमीन है, उनका जो शरीर है वो इस तरह से ऊंचा नीचा हो गया कि एक भी बूंद पानी अंदर नहीं आ सकता। गोवर्धन के चारों तरफ जो जमीन है वो इस समतल थोड़ी है, ऊंची नीची जमीन है, लेकिन शेष जी हैं अपने शरीर, उनका शरीर भी उतना ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा सब हो जाता है, फ्लेक्सीबल, तो इस तरह से जो बना दी दीवार एयर वाटर टाइट वाटर प्रूफ, एक बूंद पानी नहीं आ सकता, है ना। और प्रकाश के लिए रत्नों का प्रकाश है, गोवर्धन पर्वत के जो रत्न है वो नीचे है, रत्नों का प्रकाश है ना। अब पानी फिर बाहर जाएगा तो बाहर भी तो प्रलयकालीन है विनाश होगा, तो उसके लिए सुदर्शन चक्र वो आगे दी, तो हजार सूर्यों का जो है तेल धारण करके वो पीने लगे पानी को, तो वो ऊपर ही ऊपर पानी जो है सुदर्शन पी रहे हैं, नीचे पानी नहीं आ रहा। तो वहां पर चक्रतीर्थ भी है, गोवर्धन की परिक्रमा चक्रतीर्थ भी मिलता है, जहां पर चक्र जो है अपने हजार सूर्यों का तेज धारण करके सब पानी पी लिया। तो देखो कितनी जल्दी और कितना मतलब पूर्ण उपाय हुआ, पूर्ण उपाय, किसी प्रकार का विनाश नहीं, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, सुरक्षा बिल्कुल पूरी। एक ही पानी मतलब वो नीचे नहीं आने दे रहे हैं सुदर्शन, ऊपर ऊपर पीते जा रहे हैं, हजार सूर्यों का प्रकाश है और जो है एक कोई पानी अंदर भी नहीं आ रही है, ऐसी वाटर टाइट दीवार बना दिया शेष जी ने, है ना। तो कृष्ण का जो है ये सब कार्य और कोई नहीं कर सकता, नहीं तो नष्ट होने के सिवा और कुछ दूसरा उपाय नहीं था। हाँ तो मैं यहां पर था ना, हाँ इसके बाद श्लोक संख्या 24। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो आश्चर्यचकित हो उठा। अब मिथ्या गर्व के चूर होने से, अपने संकल्प के नष्ट होने से उसने बादलों को थम जाने का आदेश दिया। 7 दिन 7 रात वर्षा करके भी ब्रजवासियों का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, तब इंद्र को जो है उसने आदेश दिया भाई अब बंद करो, बंद करो, स्टॉप स्टॉप। कृष्ण योगानुभावंतम सम्य इंद्रो विस्मित निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान्मेघान संयमार्य। ये देखकर कि भीषण हवा और वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है, सूर्य उदित हुआ है, गोवर्धनधारी कृष्ण सब गोपों से बोले खम ब्रह्मदिता दैत्यम वादवर्षम तदारुणम सम्योपरतम गोपान गोवर्धन धरो ब्रवी। तो गोवर्धन को धारण किए हुए भगवान जो है गोपों से बोले, जब देखा कि अब भगवान को पता चल गया कि अब संकट अब दोबारा नहीं आने वाला है, तो भगवान ने सब गोपों से कहा हे गोपजनो अब अपनी पत्नियों बच्चों और संपत्ति समेत बाहर निकल जाओ और भय त्याग दो, तेज हवा वर्षा रुक गई है, नदियों की बाढ़ का पानी उतर गया है। निर्यात जयत नाशम गोपास स्त्री धनान भका उपारतम वाद वर्षम यद प्राया से निम्न गा। मतलब अब बाहर जाओ पानी भी नहीं मिलेगा आपको, जितना पानी बरसा है वो भी पानी भी नहीं मिलेगा कि पानी भरा हुआ होगा, है कितना पानी और जो है ऊंची नीची जमीन का पता नहीं चलेगा तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो भगवान कहते नहीं अब कुछ भी नहीं है, सब पानी सुखा दिया है, सुदर्शन चक्र ने सब पानी सुखा दिया है ऊपर नीचे का, नदियों में भी बाढ़ नहीं रहेगी, कुछ नहीं है, नहीं तो वो पानी फिर जो है कहाँ कहाँ जाता और कितना कितना नुकसान होता है। अपने अपने गौवें समेट कर अपनी सामग्री अपने छपड़ों में लाद कर सब गोप बाहर आए, स्त्रियां बच्चे और वृद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चले। ततस्ते गोधनम सकटोपकरणम स्त्री बाल अस्था विराशन। सारे प्राणियों को देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान में रख दिया जिस तरह वो पहले से रखा था। भगवान अभी तम शैलम स्वस्थाने पूर्व प्रभो प्रसिताम सर्वभूतानाम स्थापया महासुनी नयाम। ब्रज के सभी वासी प्रेम से विभूत थे, उन्होंने आगे बढ़कर श्री कृष्ण को बधाई दी, किसी ने उनको गले लगाया, कोई उनके सामने नतमस्तक हुआ, गोपियों ने सम्मान मैं दही अक्षत जो मैं लाया हूँ जल अर्पित किया। उन्होंने कृष्ण पर आशीर्वादों की झड़ी लगाई। गोपियां दो प्रकार की हैं, एक तो वृद्धा गोपियां माता गोपियां हैं और दूसरी प्रेयसी गोपियां हैं। तो ये माता गोपियां हैं जो कृष्ण की सुरक्षा के लिए अक्षत दही जो है कृष्ण के ऊपर डाल रही हैं। तम प्रेम वेगामृतामृजो परिरंभणा दिधि गोप्य स्नेहम पूज्य अनुदाक्ष। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विवेचना करते हुए लिखते हैं कि प्रत्येक ब्रजवासी कृष्ण को अपने अपने ढंग से मानता था, कोई अपने को छोटा मानता था, कोई अपने को कृष्ण के समान मानता था, कोई अपने को कृष्ण से बड़ा मानता था, और सब प्रेम करते हैं और कृष्ण सबका प्रेम स्वीकार करते हैं। कृष्ण से बड़े लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रेम पूर्वक उनका सिर सूंघा, चूमा, सिर को चूमा, उनके बाजुओं को, उंगलियों को दबाया, और स्नेह पूर्वक पूछा कि थके तो नहीं हो, थके तो नहीं हो, पीड़ा तो नहीं है, दर्द तो नहीं है कहीं। और किसके बराबर कि जो बालक थे वो हंसी चितौली करने लगे, और छोटे लोग चरणों में गिरे, पांवों की मालिश कर रहे हैं, पैर की मालिश कर रहे हैं, इस तरह से यशोदा, रोहिणी, नंद और वरिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ बलदेव ने कृष्ण को गले लगाया। ये सब बड़े लोग हैं, कृष्ण को गले लगाते हैं, स्नेहाभिभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। यशोदा, रोहिणी, नंदो, रामस्या बलिराम कृष्ण मालिनी आज सा स्नेह कातरा। हे राजन, स्वर्ग में सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, चारणों समेत सारे देवताओं ने कृष्ण का यशोगान किया, अतीव संतोष पूर्वक उन पर फूलों की वर्षा की। दिव्य देवगण सिद्धा साध्या गंधर्व चारणा तुष्ट तुष्टा पुष्प वर्षाणी पार्थव। तो कुछ ऐसे भी हैं भक्त लोग जो है जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं होती तो स्वर्ग में जाते हैं, उनकी भक्ति फिर भी बनी रहती है, तो स्वर्ग में भी जो है वे पृथ्वी में भगवान के जो अवतार होते हैं उनका दर्शन करते हैं। तो वे जो देवता लोग हैं वे स्वर्ग के भोगों में मतलब इतने भोले नहीं होते हैं, तो भगवान पृथ्वी में अगर लीलाएं करते हैं तो स्वर्ग से ही वो देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान की लीला। तो ये सिद्ध हैं, साध्य हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, देवता हैं, ये जो है भगवान के सुगण उस समय भी करते हैं, कितने भोगों में होते हुए भी वे जो है भोगों से ऊपर उठे रहते हैं और भगवान के गुणगान में लगे हैं और फूलों की वर्षा करते हैं ऊपर से। ये पृथ्वी के फूल नहीं है, स्वर्ग के फूल हैं। हे परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में जोर जोर से संघ और दुनिया बजाई, तुम्बुरु इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। संघ दुन्द भयो ने दुर् दिवि देव प्रचोदिता जगुर गंधर्व पति तुम गुरु प्रमुखान पै। अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों और बलदेव जी से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए जहाँ वे अपने गौ में चराते थे। अपने हृदयों को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत में उठाए जाने और उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्य के विषय में सारी गोपियाँ प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती अपने घरों को लौट गई। यहाँ जो गोपियाँ हैं ये कौन सी हैं? प्रेयसी गोपियाँ हैं। जो प्रेयसी गोपियाँ हैं तो उनको भी कृष्ण के गुणगान करने का अवसर मिला। इस समय जो है कृष्ण की चर्चा वे खुल करके कर सकती हैं, नहीं तो उनको लज्जा आती है तो कृष्ण के विषय में कोई बात वो कर नहीं सकती हैं, लेकिन इस समय उनको जो है अच्छा अवसर मिल गया। कि गोपियों ने अपने घरों को लौटने के पूर्व अपने प्रेमी श्री कृष्ण से चुपके चुपके आंखें मिलाई। सामान्यतः कृष्ण के विषय में खुलकर बातें नहीं कर सकती थी क्योंकि वे धार्मिक गांव की कुमारियां थी, किंतु अब उन्हें अद्भुत प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने कृष्ण के गुणों का गान किया, खुल करके गान किया। ये स्वाभाविक है कि एक नवयुवक किसी सुंदर युवती के समक्ष अद्भुत कार्य करना चाहता है। गोपियाँ अति सुंदर शुद्ध हृदय वाली युवतियाँ हैं और श्री कृष्ण उनके समक्ष अत्यंत अद्भुत कार्य संपन्न किए, फलस्वरूप उनके कोमल हृदयों की में गहरे प्रवेश कर गए। तो कृष्ण का जो है प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया गोपियों के हृदय में। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के अंतर्गत कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण नामक 25वां अध्याय में श्रीमद् ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवक द्वारा विरचित तात्पर्यपूर्ण हुए। तात्पर्य तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पूरे तात्पर्य नहीं पढ़े हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा या मैं प्रश्न करता हूँ? हाँ जी, हैंड माइक चालू करके देखो।
मैं शुरू से
थोड़ा माइक लगाना मुझे
गोवर्धन उठाया तो उसकी और बात और गोवर्धन उठाने से पहले ही बसना शुरू हो गई। वो एक अगर कोई सोचे उसका जो वजन होगा तो किसी इंसान के सर पे पड़ जाए, किसी जानवर के पड़ जाए या आपकी छोटे जमीन पर पड़ जाए तो खटे हो जाए अच्छे। तो मतलब ऐसा कोई आते हैं कुछ अंदर की मतलब
नहीं नुकसान हो। कृष्ण का जो नियंत्रण है वो पूरा रहता है। तो संकट दिखाई दिया लेकिन संकट में कोई ब्रजवासी पड़ा नहीं, लेकिन संकट दिखाई पड़ा तो संकट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, ठीक है ना। संकट तो बहुत बड़ा था लेकिन दुर्घटना नहीं हुई। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरे शशि, कृष्ण गीता में कहते हैं मुझ में चित्त लगाओगे तो जितनी कठिनाइयां हैं मेरी कृपा से पार हो जाओगे, है ना। तो कृष्ण के चरण कमल की नौका में बैठे हुए आप सुरक्षित रूप से कठिनाइयों के समुद्र को पार कर जाएंगे। तो नौका में आप बैठे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, समुद्र बहुत खतरनाक है, आप सुरक्षित हैं, मत चित्त। तो ब्रजवासी कृष्ण चित्त लगा दें इसलिए। और कोई, हाँ जी नहीं, मन्वंतर जब समाप्त होता है तो प्रलय होना जरूरी नहीं है। प्रलय होती है या प्रलय नहीं होती है वो उसमें जो है कोई निश्चित मतलब ये बात नहीं है कि प्रलय होगी, प्रलय हो भी सकती है प्रलय ना हो, ठीक है। हाँ, तो तब तक वो बने रहते हैं। केवल जो है जब ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होता है, हजार चतुर्युगी पूरी होती है, तब वो जो है खोले जाते हैं और तब वो बढ़ता है। सारा का सारा अगस्त मुनि ने नहीं पी लिया था, बल्कि ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र जो है उसी प्रकार से पानी को पी रहा था जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र पिया था। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि जिस प्रकार अगस्त मुनि ने समुद्र पिया था उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र उस पानी को पी रहा था, ऐसा वर्णन है। हाँ, वास्तव में इंद्र की कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तो जो है उनका दुरुपयोग ही किया उसने। इंद्र, हाँ ये होता है कभी अधिकारी का दुरुपयोग करते हैं और वो मेघों को भी डर लग रहा था। नहीं तो कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। लेकिन कृष्ण जो है मतलब इतने उदार हैं कि कोई दंड नहीं दिया। लेकिन जो है इसमें गर्ग संहिता में आता है कि इसके बाद जो है इंद्र ने वज्र चलाया गोवर्धन के ऊपर, और गोवर्धन के ऊपर वज्र चलाए इंद्र तो पर्वत को तो चूर्ण बना देगा। तो फिर भगवान ने मतलब अपना एक थोड़ा सा मतलब कदम उठाया और क्या किया, उसके हाथ स्तंभित कर दिए, वो चला हुआ है। इतने ही किया, ज्यादा ही किया, केवल जितना आवश्यक था उतना। इंद्र का हाथ हो गया स्तंभित, तब वो डरा, अब भागा। फिर सब जितने मेघ सब भागे, सब दौड़े भागे, जैसे शेर की एक झपट्टे से जो है हाथी भाग जाता, ऐसे सब भागे। ठीक है, अच्छा दो लोग हैं, ठीक है दो प्रश्न आते हैं, प्रश्न एक चालू है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने हाइट पे नहीं बनाई, हाइट तो उनको इतने के साथ साथ की होती है, ब्रजवासी तो उनसे ऊपर हाइट पे जब ऑनलाइन गए सारे के सारे भगवान से टीला तो जाके खड़े हुए थे।
हाँ बिल्कुल, एक टीले के ऊपर खड़े हुए कृष्ण और पर्वत को उठा लिया है ना, तो फिर काफ़ी मतलब नीचे नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, झुक कर के सब जाते हैं अंदर, और गौवे तो जा नहीं पा सकते, गई तो जा भी नहीं सकती है ना, सब बैलगाड़ियाँ भी गई, सब सामान गया, सब कुछ गया, तो किसी ऊँचे टीले पर खड़े होकर के उन्होंने पर्वत उठाया था। जरूर सही बात,
जैसे मान सम्मान की जैसे एक बार किसी को मान सम्मान मिल जाता है तो लेते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको वापस खींचा जाता है दिया जाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। उस दूसरे में व्यक्ति जैसे इंद्री की कथा से ये सीखना मिलता है,
नहीं ये रजोगुण के कारण है, रजोगुण में ये सब जो है अंतर होता है। सतोगुण में आप आते हैं तो मान अपमान, माना अपमान और तुल्य, तुल्यो में त्रारी पक्षी हो, सतोगुण में अगर आप आते हैं तो मान और अपमान का इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फिर भी मान अपमान का अंतर तो है ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सतोगुण में वो विचार करता है कि मुझे मतलब क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा क्या कर्तव्य है जिससे मेरा कुछ कर्म ना बने, मेरा कोई दोष ना बने, सतोगुण में वो विचार करता है, उस तरह से वो अपना कदम उठाता है, एक एक कदम उठाता है। ऐसी बात थोड़ी है पांडवों का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है द्रौपदी सोचे नहीं, नहीं कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है, द्रौपदी चाहती थी इनका जो है मतलब हाँ नष्ट होना चाहिए, इनकी मृत्यु होनी चाहिए, इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, और इस तरह से पूरे संसार में धर्म की स्थापना हो, कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसका ये परिणाम होता है। तो पांडव लोग भीमसेन द्रौपदी ये लोग चाहते थे हैं, सीता जी का अपमान किया रावण ने तो सीता ही चाहती थी रावण की मृत्यु होनी चाहिए है? और रावण को मार करके ही मेरे पति मुझे यहाँ से लेके जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई मान अपमान का कुछ अंतर नहीं पड़ता, मान अपमान का अंतर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो इन बातों को अच्छी तरह से गहराई से समझता है कि मुझे जो है मतलब कितना आवश्यक है और कितना अनावश्यक है, अनावश्यक सम्मान मिलता है, ज़्यादा सम्मान मिलता है तो वो स्वयं में लज्जित होता है कि मुझे इतना सम्मान नहीं मिलता, मिल रहा है कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की उदारता है, मुझे सम्मान मिल रहा है ना, मुझे इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कष्ट भी मिलता है तो वो सोचता है कि कष्ट मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, कृष्ण की कृपा से मुझे कष्ट कम मिल रहा है, तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जो है ऐसे विचार होते हैं, ठीक है ना। आप आखिर वायु देवता एक भी हैं, वायु देवता एक भी हैं, और 49 ये जो देवता हैं ये भी वायु के देवता हैं, और ये दिति के गर्भ से पैदा हुए थे, तो इनका ज़्यादा विवरण तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हैं, ये इंद्र के साथ रहते हैं, इंद्र के छोटे भाई हैं, ये इंद्र की हमेशा सेवा में रहते हैं, 49 मरुद गर्भ ये कहलाते हैं, और जो वायु देवता हैं उनको भी मरुद बोलते हैं, तो वो इस कारण से बोलते हैं कि ये वायु के देवता पहले से इंद्र के भाई बन गए हैं, ये वायु के देवता हैं, तो जो पहले से वायु देवता हैं उनको भी मरुद बोला जाता है, मारुति हाँ मरुद के पुत्र हैं इसलिए मारुति, दशरथ के पुत्र दासरथी, इस तरह से। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महाभोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधिका रमण की जगत कांस सुभद्रा बल देव की गौर लताई की कृष्ण बलराम की। मच्चित्ता सर्व दुर्गा।